दुर्जन सिंह ने ये सारी साजिश रची थी। आस्था का दिल अब दुर्जन सिंह का नाम आने पर नफ़रत से भर उठता था। ये इंसान आखिर चाहता क्या है? आस्था का दिमाग इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। वो बचपन से दुर्जन को देखती आई थी, किस तरह से दुर्जन बचपन से ही आस्था और नानी माँ को परेशान करता आया था। इतना ही नहीं, नानी माँ और आस्था ने अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया था। बचपन से लेकर आज तक दुर्जन सिंह ने उन्हें नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो तो नानी माँ एक मजबूत किस्म की औरत थी, जिसने वक्त रहते आस्था और खुद को संभाल लिया था। इतना ही नहीं, कई कई दिन उन लोगों को खाने पीने को भी हो जाया करते थे। दुर्जन सिंह ने पूरे के पूरे गांव में इस बात का भी मना करवा दिया था कि कोई उन्हें खाने पीने के लिए नहीं देगा। कितने ही दिनों तक उन्हें कुछ भी खाने पीने को नहीं मिला करता था। तब जाकर आस्था के दिमाग में अपने ही घर के पीछे वाली जगह पर थोड़ी बहुत सब्जियां उगाने का आइडिया आया था, क्योंकि दुर्जन सिंह के डर से कोई उन्हें कुछ भी देना पसंद नहीं करता था। जैसे तैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सर्वाइव किया था, और धीरे धीरे जब आस्था बड़े होने लगी, वो दुर्जन सिंह का अच्छी तरह से मुकाबला भी करने लगी थी और उसे अच्छे खासे जवाब भी दिया करती थी। लेकिन आज दुर्जन सिंह ने जो हरकत की थी, वो बहुत ही ज़्यादा घटिया हरकत थी। आस्था ये सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसका गुस्सा बेहद बढ़ता जा रहा था, क्योंकि दुर्जन सिंह उन्हें हमेशा से सिर्फ उनकी ज़मीन के लिए परेशान करता आया था, ताकि नानी माँ अपनी पूरी ज़मीन दुर्जन सिंह के नाम कर दे। लेकिन अब पानी सर के ऊपर से निकल चुका था, क्योंकि आज दुर्जन सिंह ने अपनी सारी हदें पार कर दी थीं। उसके खून में एक अलग ही तरह की आग लग गई थी। उसे ऐसा लगने लगा मानो कि वंशिका की जगह उसी के साथ किसी ने इस तरह की बदतमीजी की हो। अब उसने गहरी सांस लेकर, आस्था ने नफ़रत से दुर्जन सिंह का नाम लेते हुए अरमान की ओर देखकर कहा, अरमान जी, मैं चाहती हूँ कि दुर्जन सिंह को उसके किए की कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, आस्था ने दांत पीसते हुए कहा था। और ये बोलकर आस्था उम्मीद भरी नज़रों से अरमान को देखने लगी थी और उसके बाद सीधा जाकर नानी माँ के पास बैठ गई थी। वहीं अरमान आस्था को जाते हुए देख रहा था। वो अच्छी तरह जानता था कि उसकी बीवी हिंसा की हर चीज़ से दूर रहती है, लेकिन अब उसने खुद अपने मुँह से दुर्जन सिंह को सज़ा देने के लिए कहा है, तब अरमान पीछे नहीं हटेगा। अरमान के चेहरे पर अपने आप एक ईविल स्माइल आ गई थी, क्योंकि अब वो दुर्जन सिंह को ऐसी सज़ा देगा जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकेगा। अरमान ने जल्दी ही ध्रुव, आहन, आकाश और सुमित की ओर देखा और वे सारे एक साथ जमा हो गए थे। दूसरी ओर अविनाश के पास उस वक्त अबीर सिंह राठौर था। ऐसा लग रहा था कि अबीर को किसी भी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। ना तो वो आस्था के करीब जाने की कोशिश कर रहा था और ना ही उनके किसी मामले में टांगर आने की। लेकिन उस वक्त अबीर सिंह राठौर अविनाश के साथ मौजूद था। जिस वक्त से वे अरमान को ढूंढने के लिए गए थे, ठीक उसी वक्त अविनाश ने एंजल को भी वहां से निकाल दिया था, क्योंकि वो एंजल के साथ ज्यादा समय नहीं बिता सकता था जब तक एंजल बेगुनाह साबित नहीं हो जाती। एंजल ने डिसाइड कर लिया था कि वो जल्द से जल्द अपने आप को बेगुनाह साबित करेगी और सबको इस बात का यकीन दिलाएगी कि उसका डिम्पल केस कांड में कोई लेना देना नहीं था। उसके कमरे से बाहर निकलते ही अबीर वहां पहुंच चुका था। अविनाश उसकी ओर देखने लगा और सीरियस एक्सप्रेशन से बोला, तुम यहां क्या कर रहे हो? तब अबीर ने कम शब्दों में अविनाश से बातें करना शुरू कर दिया था। अविनाश जैसे जैसे अबीर की बातें सुन रहा था, वैसे वैसे उसके चेहरे पर एक अलग ही भाव आ रहा था। इस वक्त उसका चेहरा एकदम लाल हो चुका था। उस वक्त उसके गुस्से की कोई सीमा नहीं थी। तब अविनाश और अबीर ने डिसाइड किया कि उन लोगों के लिए ये जगह बात करने के लिए ठीक नहीं है। उन्हें काफी कॉन्फिडेंशियल तरीके से बातचीत करनी होगी, इसलिए वे गाँव के उस पार्क में चले गए थे जिस पार्क में आस्था अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड किया करती थी, और वहां जाकर बातें करने लगे थे। इसलिए उन्हें ये नहीं पता था कि घर में इतना बड़ा कांड हो गया है। दूसरी ओर दुर्जन सिंह को कुछ देर बाद होश आया था। होश में आने के बाद उसे रियलाइज हुआ कि उसके साथ क्या हुआ है और किस तरह से शहरी लोगों ने उसे जमकर मारा है, और अरमान और बाकी सबकी डिटेल्स निकलवाने के लिए जिस आदमी को उसने भेजा था, अभी तक उसका भी कुछ अता पता नहीं चला है। लेकिन अब दुर्जन सिंह समझ चुका था कि अरमान अब सबको उसके कांड के बारे में बता देगा तो पूरे गाँव में उसकी बदनामी होगी। वो अलग, लेकिन दुर्जन सिंह इस गांव को छोड़ने का रिस्क किसी भी कीमत पर नहीं ले सकता था कि वो अरमान और बाकी सभी को अच्छा खासा सबक सिखाएगा। इसके लिए उसने अपने चेले चपाटों को फोन कर दिया था, और चेले चपाटों ने पूरे गांव में इस बात की अफवाह फैला दी थी कि शहर के जो लोग आए हैं उनकी वजह से नानी माँ पर हमला हुआ है, साथ ही साथ दुर्जन सिंह पर भी। और दुर्जन सिंह ने गाँव के ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद की थी। काफी सारे लोगों को दुर्जन से कर्जा दिया था, तो सब लोग दुर्जन सिंह के साथ थे। दूसरी ओर अरमान ने अपने शब्दों में अपने सभी साथियों को समझा दिया था कि उन्हें कब और क्या करना है, और वैसे भी अरमान सिंघानिया की प्यारी बीवी आस्था ने दुर्जन सिंह को सजा दिलाने के लिए कहा था, तो अरमान अब हर हाल में दुर्जन सिंह को सजा दिलाना चाहता था और बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना चाहता था।
दूसरी ओर जल्दी ही दुर्जन सिंह के आदमियों का बड़ा सा झुंड लेकर नानी माँ के घर के बाहर पहुंच चुके थे और बाहर से नारेबाजी की जोरों से आवाज आने लगी थी। शहरी लोग बाहर निकलो, तुम लोगों को यहां से जाना होगा। तुम लोगों ने हमारे गांव का कायदा कानून तोड़ा है, हम तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। दुर्जन सिंह सबसे पीछे अपनी एक बग्घी पर था और उसके ऊपर एक छाता था। ऐसा लग रहा था मानो कितना बड़ा नेता वहां आया होगा। अब उस वक्त अरमान अपने आदमियों के साथ मिलकर कुछ प्लानिंग कर रहा था, लेकिन जैसे ही दुर्जन सिंह के आदमियों की आवाज आई, अरमान चौंक गया था। लेकिन जैसे ही वो बाहर आया और आस्था, रश्मि, रौनक, राधिका, उन सब ने जैसे ही बाहर का नजारा देखा तो सब पूरी तरह से चौंक गए थे। वहीं वंशिका, जिसको कंट्रोल करने के लिए रश्मि ने कुछ इंजेक्शंस दिए थे जिसकी वजह से उसे अभी तक होश नहीं आया था, उसे बेहोश हुए 2.5 से 3 घंटे हो चुके थे, लेकिन अब बाहर इतना ज्यादा शोर शराबा सुनकर धीरे धीरे उसकी पलकें फड़फड़ाने लगी। उसे भी होश आने लगा था और जैसे ही वो होश में आई, डर के मारे तुरंत उठ बैठ गई थी। उसने देखा कि अब इस वक्त उसके शरीर पर कपड़े थे, ये कपड़े उसके तो नहीं थे, ये बात तो वो समझ गई थी। जल्दी ही उसकी आंखों के सामने सारा नजारा आ गया था कि उसके साथ कब और क्या क्या हुआ था। इसलिए अब जल्दी ही वंशिका ने अचानक अपने कानों पर हाथ रखकर जोरों से चीख मार दी थी, क्योंकि बार बार उसकी आंखों के सामने दुर्जन सिंह का बड़ी ही बेशर्मी से उसके कपड़ों पर कैंची चलाना याद आ रहा था और किस तरह से वो उसके साथ रिश्ता बनाना चाहता था, ये सब याद आ रहा था। तो इस वक्त उसकी हैरानी और गुस्से की कोई सीमा नहीं थी। वंशिका की चीख सुनकर ध्रुव, जो बाहर आदमियों को देखने के लिए जा रहा था, वो तुरंत दौड़कर रश्मि के कमरे में गया था। अब वंशिका ने जैसे ही ध्रुव को अपने सामने देखा और ध्रुव ने वंशिका को देखा, एक पल के लिए दोनों ने ही अपनी आंखें झुका ली थी, क्योंकि वंशिका को वो सीन याद आ गया था जब ध्रुव ने उसे बिना कपड़ों के केवल इनरवियर में देखा था। तो ध्रुव के सामने वंशिका को एक अलग तरह की शर्म महसूस हो रही थी, लेकिन ध्रुव शायद अंदाजा लगा गया था। वंशिका के पास जाकर ध्रुव ने उसे साफ शब्दों में कहा,
तुम्हें मुझे किसी भी तरह से शर्मिंदगी महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है और तुम बिल्कुल सेफ हो, बिल्कुल ठीक हो। हमारे अरमान भाई ने तुम्हें वक्त रहते बचा लिया। अब जैसे ही ध्रुव ने ये कहा कि अरमान भाई ने तुम्हें वक्त रहते बचा लिया, वंशिका की तो आंखें हैरानी से फैल गई थीं। तब वो ध्रुव की ओर देखकर बोली, क्या? और तुम लोगों को कैसे पता चला कि मैं वहां उन लोगों की कैद में हूं? तब ध्रुव ने एक एक करके सारी बातें बताना शुरू कर दिया था कि किस तरह से अरमान उसे जंगलों में ले गया था, लेकिन असल में उसे भी नहीं पता था कि वे लोग कहाँ जा रहे हैं। और वहां पर जाकर उन्हें इस बात के बारे में पता चला कि अरमान को शायद दुर्जन सिंह पर शक हो गया था, इसीलिए वो तुम्हें बचाने के लिए वहां गया था। अब जैसे ही वंशिका ने ये सुना, उसने अपने हाथों की मुट्ठियां कस ली, उसके चेहरे पर मिस्टीरियस एक्सप्रेशन आ गए थे। अब इससे पहले कि वंशिका कुछ कहती, बाहर से नारेबाजी की तेज आवाजें गूंजने लगी थीं। वंशिका जल्दी वहां से बाहर आ गई थी। वंशिका ने देखा कि कितने सारे लोग, अब दुर्जन सिंह के आदमी, अब अरमान, आस्था और बाकी सबसे वहां से जाने के लिए कह रहे थे। आस्था उन सबके सामने खड़ी हुई थी और बिना डरे बिंदास होकर बोली, ये सब क्या बदतमीजी है? और काका, क्या आप हमें जानते नहीं हैं? बचपन से यहीं पली हैं, तो हम यहां से क्यों जाएं? और ये सब क्या लगा रखा है आप लोगों ने? और हमने कोई गलती नहीं की है, सारी गलती दुर्जन की है। आस्था ने सीधे सीधे तरीके से दुर्जन का नाम लिया था, उसे आज वो चाचा वगैरह कुछ भी कहकर नहीं पुकार रही थी। दुर्जन ने हमारे शहर की एक लड़की के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है और उसके उन्हें कुछ कहने के बजाय आप सब लोग हमें यहां से निकलने के लिए आ गए हैं। अब आस्था की बात सुनकर एक पल के लिए वहां शांति छा गई थी। वहीं अरमान, जो एकदम खामोश खड़ा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि ये तूफान आने से पहले की शांति थी। अरमान को इतना शांत देखकर कहीं ना कहीं राधिका, रौनक, साथ ही साथ रश्मि, वो तीनों ही एक दूसरे की शक्ल को देख रही थी, क्योंकि जहां तक उन्होंने अरमान को जाना था, अरमान इस सिचुएशन में भला चुप कैसे रह सकता था। वहीं आहन, आकाश, सुमित, वे बिल्कुल बेफिक्री से खड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था कि उन गांव वालों के वहां पर आने का, उन पर इल्जाम लगाने का, उन पर किसी तरह का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। दुर्जन सिंह ने जैसे ही ये देखा कि कोई भी लोग किसी तरह का कोई आर्ग्यूमेंट तमाशा नहीं कर रहे थे, उसका इरादा तो यही था कि सब जैसे ही शहर वाले उन पर इल्जाम लगाएंगे, बदले में वे गाँव के लोग भी उनसे बहस करेंगे, आर्ग्यूमेंट करेंगे। लेकिन अरमान की साइड से तो किसी ने कुछ बोला ही नहीं था, केवल आस्था ही हाँ हूँ का जवाब दे रही थी। लेकिन अब दुर्जन सिंह का पारा चढ़ गया और वो खुद उतरकर सामने आया था और भड़कते हुए बोला, ए लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई हम पर इस तरह का इल्जाम लगाने की? क्या तू भूल गई हम तुम्हारे रिश्ते में चाचा लगते हैं? अरे, हमें तुम्हें इस तरह से गांव में आने ही नहीं देना चाहिए था। क्या जरूरत थी तुम लोगों को पिशाच वाले पेड़ के पास जाने की? देखा तुमने, उसकी मनहूसता की वजह से हमारी प्यारी काकी माँ शारदा जी क्या हालत हो गई।
पिशाचिनी ने उनकी क्या हालत कर दी है और ऊपर से तुम हमें किसी लड़की के साथ फंसा रही हो। अरे मूर्खवा गई हो क्या? अब दुर्जन सिंह की बात सुनकर आस्था को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वंशिका ने अचानक दुर्जन सिंह के सामने जाकर उसे खींचकर एक थप्पड़ मार दिया था। अब तो सब लोगों ने हैरानी से अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। वहीं दुर्जन सिंह के आदमी पूरी तरह भड़क गए थे। किस तरह से भला उनके महान नेता, महान आदमी दुर्जन सिंह पर भला एक लड़की कैसे हाथ उठा सकती थी? तब वंशिका अपनी उंगली दिखाते हुए, अपनी आंखों में नमी लाकर उस दुर्जन सिंह की ओर देखते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? आखिरकार तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम्हें क्या लगा शहर की लड़की कमजोर है तो तुम जैसा जो मर्जी चाहे उसके साथ ऐसा बर्ताव करोगे? याद रखना, हम तुम्हें तुम्हारे किए की सजा दिलाकर रहेंगे। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ, तुम्हें अरेस्ट करवाऊंगी। अब जैसे ही दुर्जन सिंह को चाटा मारने के बाद वंशिका ने दुर्जन सिंह को पुलिस की धमकी दी, दुर्जन सिंह की आंखें तो वैसे ही गुस्से से लाल हो गई थीं, क्योंकि गांव वालों के सामने वंशिका ने उसको चाटा मारा था, तो इसीलिए वो अब घूर कर वंशिका को देखते हुए बोलता है, ऐ लड़की, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई हम पर हाथ उठाने की? फिर वो वंशिका के थोड़ा सा करीब जाकर बोला, आज हम तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर पाए, लेकिन अब तो हम तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम अपना मुंह कहीं दिखाने के लायक नहीं रहोगी। अब जैसे ही दुर्जन सिंह ने धमकी दी, ध्रुव का भी गुस्सा बढ़ गया था, क्योंकि भला वो इस तरह से वंशिका के साथ ऐसी हरकत होते हुए कैसे देख सकता था। इसीलिए ध्रुव ने भी आगे बढ़कर दुर्जन सिंह का गिरेबान पकड़ लिया था। और तभी अचानक दुर्जन सिंह ने अपने आदमियों को कुछ इशारा किया और उसके कितने सारे आदमी अब ध्रुव और वंशिका की ओर बढ़ने लगे थे। उन सबके हाथों में कुछ ना कुछ हथियार थे, लेकिन तभी अचानक पूरे गांव में एक अजीब तरह का शोर गूंजने लगा था। आगे की स्टोरी जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM। दोस्तों, बहुत जल्द इस स्टोरी का एंड होने वाला है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग मेरी बाकी की कहानियों को भी ढेर सारा प्यार देंगे। धन्यवाद।